हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इस समय तारा की सांसें अटकी हुई थीं। कारण एक ही था, ध्रुव राणा। अनजाने में ही सही, ध्रुव ने तारा के सच को पकड़ लिया था। हालांकि वो तारा का सच जानने के लिए एक चांस ले रहा था, तो वहीं उसके मुंह से सच सुनकर तारा वहीं पर फ्रीज हो गई थी। वो यही सोच रही थी कि आखिर ध्रुव को कैसे पता चल सकता है कि मार्टिन बस एक मोहरा था, तारा असल में किसी और के लिए काम कर रही थी। तारा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे खुद के डर को काबू करना होगा। ये मेरे डर के साथ खेल रहा है। वो लोग इसे इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? अफसोस होता है उनके घटिया प्लान पर। डर के मारे तारा के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। ध्रुव ने तारा के माथे पर पसीने की एक बूंद को अपनी उंगली से साफ किया और एक ईविल स्माइल के साथ कहा, अब तो तुम जाल में आकर फंस गई हो, क्या फ़ायदा डरने या घबराने का? मेरी एडवाइस मानो तो अभी भी तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का एक तरीका है। तारा ने गर्दन उठाकर सवालिया नज़रों से ध्रुव की आंखों में देखा, तो ध्रुव ने जवाब में कहा, अभी भी मौका है, जिसके लिए काम कर रही हो उसके बारे में बता दो, आई स्वेयर कुछ नहीं करूंगा और मैं अपने वादे में पक्का हूं। देखा जाए तो तारा के पास अच्छा चांस था जिससे वो ध्रुव से बचकर निकल सकती थी, लेकिन उसका ये डर पूरे पुलिस फोर्स के मिशन को बर्बाद कर सकता था। कबीर की जान खतरे में आ सकती थी। तारा ने खुद को मजबूत किया और धीमी आवाज में कहा, मैं किसी के लिए काम नहीं करती। तो चेहरे पर फिर ये डर और घबराहट किस खुशी में है? ध्रुव ने भौहें उठाकर पूछा। क्योंकि तुम मुझे डरा रहे हो। तुमने जिस तरह से मार्टिन को मेरी आंखों के सामने मारा था, उसके बाद अच्छा खासा इंसान तुमसे डरने लग जाएगा, तारा ने खुद को मजबूत करके जवाब दिया, और जल्द ही वो ध्रुव से काफी कदम दूर हो गई। तारा ने महसूस किया कि ध्रुव के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ने लगे थे। उसने मौके का फायदा उठाया और नम आंखों से कहा, सच कहूं पहले पता होता तो कभी उस आदमी से पैसे उधार नहीं लेती, चाहे मुझे भीख क्यों ना मांगनी पड़ती। आप लोगों की आपसी दुश्मनी में मैं फंसकर रह गई हूं, और पता नहीं मेरे भाई बहन इस वक्त कहाँ होंगे। ध्रुव ने आंखें घुमाकर तारा की तरफ देखा और बोरियत भरे लहजे में कहा, इमोशनल ड्रामा तो मेरे सामने मत ही करो, यहां पर क्रिश नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाएगी। तारा को ध्रुव को टालने का कोई मौका नहीं सूझ रहा था, उसके पास तारा की हर बात का जवाब था। तारा सोच रही थी कि वो ध्रुव को क्या जवाब दे कि तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाने लगा। वो गिरती उससे पहले ध्रुव ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। तारा को बहुत भूख लगी थी और वो खाना खाने के लिए भी नीचे आई थी। वीकनेस की वजह से उसे चक्कर तक आने लगे थे। तारा को लगा कि वो ध्रुव के सवालों से बच गई है। तभी ध्रुव ने सख्त अंदाज में कहा, बचने का अच्छा तरीका निकाला है, लेकिन तब तक बेहोश रहोगी। ऐसा करो, तुम कोमा में चली जाओ, फिर शायद मैं तुमसे कोई सवाल ना करूं। किसी भी इंसान को इतना बेरहम नहीं होना चाहिए कि उसे सामने वाले की तकलीफें दिखाई न दे, तारा ने हल्के गुस्से में कहा। हालांकि कमजोरी के चलते उसे ठीक से खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तारा ने ध्रुव को खुद से दूर कर दिया था। तारा कुछ कदम लड़खड़ा गई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभालने के लिए डाइनिंग टेबल पकड़ लिया था। वो ध्रुव की तरफ देखते हुए हल्के गुस्से में बोली, मुझे भूख लगी थी और मैं खाना खाने के लिए नीचे आई थी। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैंने कल दोपहर को लंच किया था, उसके बाद में तुमने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। हाँ, तो मैं तुम्हारा केयर गिवर नहीं हूँ। तुम्हें भूख लगी है तो नीचे आकर खाना बनाओ, या फिर बना हुआ लो और खाओ, कौन सा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रखा हूँ, ध्रुव ने चिढ़कर जवाब दिया। नीचे सिर्फ पानी पीने के लिए भी आऊं तो तुम्हारे सवाल शुरू हो जाते हैं। अभी भी तुम मुझे टॉर्चर कर रहे थे। देखो, तुम्हें मुझ पर शक है तो मुझे अपने घर पर रखा ही क्यों है। ऐसा करो, किसी जगह पर ले जाकर बंद कर रख लो, मेरे बारे में पता लगाओ, और जब पता चल जाए तब मुझे छोड़ देना या मेरी मदद कर देना, लेकिन भगवान के लिए मुझे इस तरह दिन रात डराना बंद करो, तारा ने चिल्लाकर कहा। बोलते हुए वो रोने लगी थी। इस वक्त तारा कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी, सच में वो अंदर के अंदर डर के साए में जी रही थी। जब से उसने ध्रुव को बेरहमी से मार्टिन को मारते हुए देखा था, तब से उसे यही डर सता रहा था कि अगर ध्रुव ने उसे पकड़ लिया तो वो उसके साथ क्या करेगा। तारा गुस्से में रोती हुई दौड़कर अपने कमरे में चली गई, तो वहीं ध्रुव सुनसा खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पंच किया। तभी मुझे इन लड़कियों से नफरत है, मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा जितना ये मेलोड्रामा करके गई है, ध्रुव पैर पटकते हुए किचन के अंदर जाने लगा। ध्रुव अंदर तारा के लिए खाना बना रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर तारा की हालत देखकर उसे खुद पर कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। ध्रुव गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, अनफॉर्चुनेटली मुझ पर क्रिश का असर होने लगा है। डैड ने इतना समझाया था कि इमोशन सिर्फ फैमिली के लिए होने चाहिए, लेकिन क्यों मुझे इस लड़की के आंसुओं से फर्क पड़ रहा है? अगर यही रहा तो कल को कोई भी आकर मेरे सामने दो आंसू बहाएगा तो मैं पिघल जाऊंगा। लगभग आधे घंटे में ध्रुव ने तारा के लिए हल्का फुल्का खाना तैयार कर दिया था। वो खुद से तारा के सामने खाना लेकर नहीं जाना चाहता था। अगर वो ऐसा करता तो शायद तारा यही समझती कि ध्रुव को उसके इमोशन से फर्क पड़ रहा था। वहीं उससे अलग तारा घुटनों में मुंह छुपाए जोर जोर से रोए जा रही थी। वो सुबकते हुए मन ही मन बोली, मैं पहले भी इस तरह की सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस बार इतना अजीब फील क्यों हो रहा है? वो मेरा कुछ नहीं लगता है, फिर भी मुझ पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है तो मुझे बुरा लगता है। मुझे जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। मुझे इस इंसान से और उसकी फैमिली से नफरत होनी चाहिए, पर न जाने क्यों एक ही बार मिलने के बाद में सब अपने जैसे फील लग रहे हैं। तारा अंदर ही अंदर अपने इमोशन से लड़ रही थी। वहीं ध्रुव खाना बनाने के बाद खुद उसके लिए खाना लेकर नहीं जाना चाहता था। बीते सालों में युग के विला में काफी बदलाव आए थे। नीचे का टॉर्चर रूम ट्रेनिंग रूम में बदल दिया गया था और वहां अब सिक्योरिटी सिर्फ बाहर ही रहती थी। हाउस हेल्पर भी कुछ घंटे के लिए ही अंदर आते थे। ऐसे में घर के अंदर सिर्फ ध्रुव और तारा ही बचे थे। ध्रुव उसके लिए खाना लेकर नहीं जाना चाहता था तो उसने वीर को कॉल किया। अब किसका किस्सा खत्म कर दिया है तुमने? देखो पहले ही मैं तुम्हारे फैलाए रायते समेटने में लगा हूँ, थोड़ा टाइम तो दिया करो सबूत मिटाने को, वीर ने थोड़ा इरिटेट होकर पूछा। ध्रुव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अभी इसी वक्त घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, वैसे भी मैं तेरे घर के पास ही था, वीर ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद वीर ध्रुव के पास पहुंचा। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, इस पर उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। वीर भी जानता था कि योग यहाँ पर नहीं है। वीर ने हैरानी से पूछा, मुझे तो लगा था कि अंकल और आंटी के जाने के बाद में तुमने उसे निपटा दिया होगा, लेकिन अब तक वो सही सलामत कैसे हैं? कहीं तुम ये काम मुझे तो नहीं करवाने वाले? देखो मैं ये नहीं करूंगा। अपनी पटर पटर बंद करो, मुझे कृष के अलावा किसी और की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है ताकि तुम उसके लिए खाना लेकर जा सको, ध्रुव ने जवाब दिया।
वीर उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगा, मानो अभी अभी ध्रुव ने जो कहा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वीर ने सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा, तुमने उसके लिए खाना बनाया? क्यों, तुम्हें कोई और नजर आ रहा है जो उसके लिए खाना बनाएगा? देखो अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, जो कहा है जितना कहा है करो, ध्रुव ने चिढ़कर कहा। जब अपने खूबसूरत हाथों से खाना बनाई दिया है तो लेकर भी खुद ही चले जाओ ना, वीर ने सिर हिलाकर कहा। मुझे ले जाना होता तो तुम्हारे आने का वेट नहीं करता और ना ही तुम्हारी इतनी बकवास सुनता। अब जो कहा है वो करो, उसे ये मत बताना कि ये खाना मैंने बनाया है, बोल देना बाहर से ऑर्डर किया था, ध्रुव ने सख्त लहजे में कहा और फिर जबरदस्ती वीर के हाथ में खाने की प्लेट थमा दी थी। वीर ने शरारती मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा तो ध्रुव ने उसकी तरफ सर्दअंदाज में देखते हुए सिर हिलाया। वीर जल्दी से खाना लेकर ऊपर बढ़ रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, ये सिर्फ अपनी मॉम के लिए कुकिंग करता है, वो इस लड़की के लिए खाना बना रहा था, क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव को इस लड़की से प्यार हो रहा है? अगर ऐसा हुआ तो मेहर रायचंद इन दोनों को मार देगी। वीर ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि तारा घुटनों में सिर रखकर बैठी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, फिर भी वीर ने दरवाज़ा लॉक किया तो तारा ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा। रोने की वजह से उसकी आँखें लाल थीं। वीर कमरे के अंदर आते हुए बोला, देखो वैसे तो मुझे तुमसे कोई सिंपैथी नहीं है और ना ही तुम पर यकीन करता हूँ, पर तुम रो क्यों रही थी? ध्रुव की बातों पर मत जाओ, वो तुम्हें कितना भी डरा ले लेकिन अपनी डैड की परमिशन के बिना तुम्हें मार नहीं सकता है। चलो खाना खाओ, काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही हो। मुझे भूख नहीं है, तारा ने सख्ती से कहा और अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली थीं। ठीक है मत खाओ, मैं खा लेता हूँ, वैसे भी उस डेविल 2.0 के हाथ का खाना खाने का मौका कहाँ मिलेगा, वीर ने बेपरवाही से कहा तो तारा ने जल्दी से उसके हाथ से प्लेट छीन ली थी। अनजाने में ही सही वीर ने उसके सामने ये बोल दिया था कि वो खाना ध्रुव ने बनाया है। वहीं अंदर हो रही हरकत से अनजान ध्रुव कमरे के बाहर दीवार पर सटकर खड़ा था। उसे सिर्फ उनकी बातें सुनाई दे रही थीं जिसमें तारा ने ये कहा था कि उसे भूख नहीं है। बस यही, मुझे लड़कियों के इन ड्रामा से नफरत है, थोड़ी देर पहले रोकर गई थी कि इसे भूख लगी है और अब अचानक इसकी भूख मर गई। मन तो कर रहा है खाने की बजाय इसे गोलियां खिला दूं ताकि हमेशा के लिए इसकी भूख और ये दोनों शांत हो जाएं, ध्रुव गुस्से में बोला और उसने अपनी रिवॉल्वर तक लोड कर ली थी। अंदर तारा खाना खाने में लगी थी जबकि वीर चुपचाप उसे देख रहा था। इस बीच ध्रुव गन के साथ अंदर आया और बिना तारा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर कहा, अच्छा तो तुम्हें भूख नहीं लगी है, फिर नीचे मेरा दिमाग क्यों खा रही है, उसी से तुम्हारा पेट भर गया। बोलते हुए अचानक ध्रुव रुक गया, उसने देखा तारा खाना खा रही थी लेकिन उसकी इस हरकत में ये जाहिर हो गया था कि वो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। ध्रुव ने एम्बेरसमेंट से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ दक्ष इस वक्त अपनी गाड़ी में किसी का पीछा कर रहा था, वो किसी और की नहीं बल्कि मेहर के पीछे था। मेहर ध्रुव से मिलने के लिए मुंबई आई थी, इससे अच्छा मौका दक्ष को कब मिल सकता था जब वो इस रात को भी अपनी इंसल्ट का बदला मेहर से ले सकता था।
फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है दक्ष क्या करेगा और बदले में फिर ध्रुव क्या करेगा? ध्रुव की हरकतें तो कुछ और ही जाहिर कर रही हैं। आपको युग तो पसंद ही है, लेकिन थोड़े दिनों में आपको ध्रुव भी अच्छा लगने लग जाएगा। वैसे एक बात बता दूं कि ध्रुव युग से अलग है, वो पूरा युग की तरह नहीं है, वो युग और कृष का मिक्सचर है। दूसरा, मैंने फिर से चैप्टर एक दिन के गैप से शेड्यूल किए हैं, लेकिन इस बार पार्ट्स बड़े लिखे हैं। उम्मीद है आप भी कहानी को प्यार देंगे और एक्टिव रहकर समीक्षा करेंगे। एक थैंक्स उनको जो एक मिनट का टाइम अलग से देकर समीक्षा करते हैं।